नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित पुस्तक से संबंधित टिप्पणियों पर बार बार स्थगित, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस नेता पर काल्पनिक और तथ्यात्मक रूप से गलत अंशों का हवाला देने का आरोप। केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए बजट में 10,000 करोड़ रूपए आवंटित किए। सरकार ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर कहा, देश में रामसर स्थलों की संख्या 2014 में 26 से बढ़कर वर्तमान में 98 हो गई है। और घरेलू शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स में 944 अंक और निफ्टी में भी 263 अंक की बढ़त। समाचार विस्तार से। लोकसभा में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के लिए कुल 18 घंटे निर्धारित हैं। सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण को उल्लेखनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह अभिभाषण सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और विकसित भारत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री सोनोवाल ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के दौरान देश को नीतिगत गतिरोध, भ्रष्टाचार से ग्रस्त सरकार और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद भारत ने तीव्र विकास और चौतरफा प्रगति की राह पकड़ी है। उन्होंने डिजिटल इंडिया पहल के महत्व पर भी बल दिया।
डिजिटल इंडिया केवल एप्लीकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सशक्तिकरण की बात है। डीबीटी के माध्यम से सीधे 44 लाख करोड़ रुपए का हस्तांतरण हुआ है और 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। वैश्विक डिजिटल लेन देन का लगभग आधा हिस्सा भारत में हो रहा है।
उधर राज्यसभा में चर्चा के लिए कुल 16 घंटे आवंटित किए गए हैं। प्रस्ताव पेश करते हुए मनोनीत सदस्य सी सदानंदन मास्टर ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू ने अभिभाषण में विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण व्यक्त किया है। प्रस्ताव का समर्थन करते हुए भाजपा की डॉ मेधा विश्राम कुलकर्णी ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में भारत की निरंतर प्रगति को दर्शाया गया है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार किसान विरोधी और मजदूर विरोधी है। तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने आरोप लगाया कि डिजिटल प्रणालियां साइबर धोखाधड़ी और डेटा घोटालों को बढ़ावा दे रही हैं। जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव सहित अन्य लोग भी चर्चा में शामिल हुए। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक से संबंधित टिप्पणी पर हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। दूसरे स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर राहुल गांधी ने दोबारा अप्रकाशित पुस्तक का जिक्र किया, जिस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति दर्ज की। राहुल गांधी ने कहा कि वो इस मामले को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी को अध्यक्ष के निर्देश की याद दिलाई और उनसे धन्यवाद प्रस्ताव के विषय पर ही बोलने का आग्रह किया।
इस पर रूलिंग आ चुकी है और अगर आपने तय कर लिया है कि आप स्पीकर के उस व्यवस्था देने के बावजूद बार बार आप उस विषय को, जिसके बारे में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी कहा कोई किताब पब्लिश हुई हो तो बता दें, अगर आपको बोलना है तो मैं आपको अलाउ करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहुत से मुद्दे हैं, रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, या आपके पास ये सब विषय नहीं है।
दूसरे स्थगन से पहले राहुल गांधी के इसी विषय पर बात करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन पर मनगढ़ंत और तथ्यात्मक रूप से गलत उदाहरण देकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया।
प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय या लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहाँ पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि जब किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है तो राहुल गांधी उसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को सेना का अपमान नहीं करना चाहिए।
हमारा देश का आर्मी का मनोबल को गिराने के लिए, हमारा देश का विदेश नीति, रक्षा नीति जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उसको वो मजाक के तौर पर दुनिया के सामने में पेश करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बीच में क्या बात होता है, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के बीच में क्या बात होता है, ये कोई सार्वजनिक घोषणा करके बताने का चीज होता है क्या? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सोची समझी एक षड्यंत्र है।
अध्यक्ष की बार बार अपील के बावजूद राहुल गांधी नहीं माने और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए बजट में बायो फार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जैविक और जैव समान दवाओं के उत्पादन के लिए भारत के इकोसिस्टम को मजबूत करना है। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय बजट में विनिर्माण पैमाने, कुशल मानव संसाधन, नैदानिक अनुसंधान क्षमता और नियामक विश्वसनीयता को एक ही ढांचे में एकीकृत किया गया है। सरकार ने 3 नए राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों की स्थापना और 7 मौजूदा संस्थान के उन्नयन के माध्यम से जैव औषधीय क्षेत्र पर केंद्रित नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य जैव औषधीय अनुसंधान, विकास, विनिर्माण और विनियमन में उच्च विशिष्ट मानव संसाधनों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना है। इसके अलावा देश भर में 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त नैदानिक परीक्षण स्थलों के विकास के प्रस्ताव के साथ एक व्यापक नैदानिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण शामिल है। सरकार ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDA की क्षमता बढ़ाने सहित जैविक दवाओं के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने की भी घोषणा की है। मीडिया से बात करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि
भारत पहले ही बायो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है। इस क्षेत्र में भारत 3rd नंबर पर है। यह 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन असल में एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी भी शामिल है। इससे काफी बढ़ावा मिलेगा और हम उन चुनिंदा देशों में से हैं जिनके पास बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक खास पॉलिसी है,
एक्सक्लूसिव पॉलिसी फॉर बायोटेक्नोलॉजी।
बजट में किए गए प्रयासों से भारत को वैश्विक फार्मा बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक मजबूत आधार मिलेगा। साथ ही घरेलू स्तर पर उन्नत और किफायती जैविक चिकित्साओं तक पहुंच में सुधार होगा। भानु प्रताप सिंह के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2,78,00,000 रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
टोटल आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 72,468 करोड़ रुपीस के रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस साल का बजट है 11,486 करोड़ और टोटल प्रोजेक्ट्स हैं 72,468 करोड़ और कई नए प्रोजेक्ट्स का सर्वे चल रहा है, नए ब्रिजेस का सर्वे चल रहा है।
श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय बजट में रेल मंत्रालय को आंध्र प्रदेश में 10,134 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आवंटन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए 23,926 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में राज्य की 2 नई बुलेट ट्रेन परियोजनाएं मुंबई पुणे और पुणे हैदराबाद को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पश्चिम बंगाल को 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बुलेट ट्रेन वाराणसी को पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से जोड़ेगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष केंद्रीय बजट में ओडिशा की रेल परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड 10,928 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पर आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें झूठा बताया है। इससे पहले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मुलाकात की और राज्य में चल रहे SIR से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए। सूत्रों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों द्वारा धैर्यपूर्वक सुनने के बावजूद ममता बनर्जी ने झूठे आरोप लगाए। श्री कुमार ने स्पष्ट किया कि कानून का शासन कायम रहेगा और कानून को अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को पूरा भरोसा है कि राज्य में SIR प्रक्रिया 7 फरवरी के निर्धारित समय सीमा तक पूरी हो जाएगी। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि 15 लाख से अधिक मतदाताओं की सुनवाई अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित अंतिम मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर कड़ी निगरानी की जा रही है। श्री अग्रवाल ने बताया कि 7,44,000 से अधिक मतदाताओं ने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ने आर्द्रभूमि संरचना में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नई दिल्ली में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आर्द्रभूमि न केवल पारिस्थितिकी संपदा है बल्कि पारंपरिक ज्ञान का स्रोत भी है।
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां पहले केवल 26 हमारे यहाँ रामसर साइट्स थे, आज 98 रामसर साइट्स हो गए हैं। ये दिखाता है, दर्शाता है हम लोगों के सरकार की जो पर्यावरण को बचाने के लिए अपनों का कमिटमेंट है, ये हम लोग पूरी तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
ढाका की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 10 साल और उनकी भतीजी ब्रिटिश सांसद चुलिप सिद्दीक को 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। ये सजाएं पूर्वांचल न्यू टाउन भूखंड आवंटन परियोजना में अनियमितताओं से जुड़े 2 भ्रष्टाचार मामलों में दी गई हैं। अदालत ने शेख हसीना की दूसरी भतीजी अजमीना सिद्दीक और भतीजे रादवान मुजीब सिद्दीकी बाबी को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 18 अन्य आरोपियों को 2 से 10 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने कहा है कि शेख हसीना ने राजग सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर ढाका के पूर्वांचल न्यू टाउन परियोजना के राजनीतिक क्षेत्र में अपने परिवार के सदस्यों के लिए अवैध रूप से भूखंड हासिल किए। नेपाल सरकार ने ईरान में जारी अशांति और वित्तीय अस्थिरता के मद्देनजर सभी नेपाली नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक ईरान की यात्रा स्थगित करने का परामर्श जारी किया है। ईरान में मौजूद नेपाली नागरिकों को शीघ्र देश छोड़ने का भी परामर्श दिया गया है। यूरोपीय संघ के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित करने के फैसले के विरोध में ईरान ने यूरोपीय संघ के सभी राजदूतों को तलब किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने बताया कि तलब करने की प्रक्रिया कल शुरू हुई और आज भी जारी रही। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष ने कहा कि ईरान 2019 के एक कानून का हवाला देते हुए यूरोपीय संघ के सभी सैन्य बलों को आतंकवादी समूह मानता है। और अब आर्थिक जगत की बात करें तो आज घरेलू शेयर बाजार में उछाल आया। ब्यौरे के साथ हैं प्राची प्रिया।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 944 अंक बढ़कर 81,666 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 263 अंक चढ़कर 25,088 पर बंद हुआ। और इंटरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के मुकाबले रुपया 48 पैसे मजबूत होकर 91.51 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के नेता राहुल गांधी की पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित पुस्तक से संबंधित टिप्पणियों पर बार बार स्थगित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस नेता पर काल्पनिक और तथ्यात्मक रूप से गलत अंशों का हवाला देने का आरोप। केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए बायो फार्मा शक्ति योजना के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। सरकार ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर कहा, देश में रामसर स्थलों की संख्या 2014 में 26 से बढ़कर वर्तमान में 98 हो गई है। और घरेलू शेयर बाजार में उछाल, सेंसेक्स में 944 अंक और निफ्टी में भी 263 अंक की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।